पैर जाकर कहने निवेदन का विचार है कि आज आपके समक्ष व्यक्ति पूर्ण व्यक्ति कैसे बनता है और किन कारणों से बाधा हो जाता है या वाद विवाद हो जाता है, विवाद होता है। तो आज का विषय है हम पूर्ण कैसे बने, हम नहीं बन पाते तो का बनते हैं। प्रगति का नियम है कि हर चीज पूर्णता में ही समाप्त होती है। आप एक नदी लीजिए, बादल समुद्र में से जल लेता है, कहीं भी बरसे, लेकिन व्यवस्था है, नाले से नदी, नदी से समुद्र जाते व्यवस्था है। न किसी का संकल्प है, न किसी की प्रार्थना है, लेकिन जिस पूर्णता में से हम निकले हैं, जिस समुद्र पूर्ण है, पूर्ण गांव, कितना पानी आप निकालिए लेकिन घटेगा नहीं, और कितना अकाल पड़े, बरसात नहीं हो तो समुद्र पानी घटता नहीं। हर परिस्थिति में जो समान है, दुख है कि सुख है, कि गर्मी है कि ठंडी है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, मान है कि अपमान है, वह पूर्ण व्यक्ति माना जाता है जिसका उदाहरण समुद्र भी है। समुद्र में खारापन भी है और नीचे जाइए हीरे मोती भी है, सब कुछ। भगवान को जब आप पूर्ण मानते हैं तो उसमें भी यही आता है। व्यवहारिक दृष्टि से उसे युद्ध भी करना पड़ा और करुणामय भी है, करुणा भी दिखाई, दोनों चीजें होती हैं। समय और व्यवहार की दृष्टि से प्रभु में करुणा भी है, तेज भी है, युद्ध भी है, शांति भी है, सब कुछ है। जो जहां से आया है जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा वह पूर्ण नहीं होता। तो रास्ते में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, अभी आप लोग आए, कोई बड़ौदा से, कोई सूरत से, कोई निगोरा से, कोई भरू से, कोई दूर से भी है। तो जब आप चले थे तो आपका लक्ष्य क्या था, क्या आश्रम में है, यहां का कार्यक्रम पूरा करके जब वापस जाएंगे उसी रास्ते वापस जाएंगे। आप अगर बड़ौदा से आए तो वापस दूसरे रास्ते जाएंगे, आप अगर सूरत से आए तो उसी रास्ते वापस जाएंगे। लेकिन हम वापस पूर्ण व्यक्ति क्यों नहीं बन पा रहे। नदी में आप प्रवेश कीजिए, सामने हमारे आपके पवित्र मातृभूमि लोक माता नर्मदा जी, नदी में आप प्रवेश करें तो समुद्र की तरफ जाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, लेकिन हमारे कंटक की तरफ या इस समय हम अंगारेश्वर में हैं, झनौर की तरफ, अंगारेश्वर में हम आप अंगारेश्वर के घाट पर नदी में प्रवेश करते हैं तो भरूच की तरफ जाने में कोई प्रयास नहीं, लेकिन अंगारेश्वर के घाट के आधार पर जब नदी में प्रवेश करते हैं तो झनौर की तरफ जाना, अमर कंटक की तरफ जाने के लिए प्रबल बल चाहिए, संकल्प चाहिए, तैयारी चाहिए। अर्थात ये जगत जो है भोग है, भोग की तरफ कोई भी जा सकता है, लेकिन पुनः अपनी अवस्था में जाने के लिए योग की जरूरत पड़ती है। आज पूरा विज्ञान मान गया हम पानी से जब अभिषेक करते हैं तो पानी भी नीचे की तरफ जाता, क्योंकि विराट जो है नीचे पानी, हम अग्नि को कहीं प्रकट करें लेकिन उसका मुख ऊपर होता है, क्योंकि विराट जो है सूर्य जो है ऊपर है। तब कुदरत का एक नियम है, उसी नियम में हम भी आते हैं कि हम आप पूर्ण में से आए हैं और जब तक पूर्ण में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हमें आधे रास्ते में परेशानी रहेगी। आप सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ पर चल रहे हैं, अगर ऊपर चले गए तो आनंद ही आनंद, बीच में सीढ़ियों पर रुक गए तो आप भी परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन सीढ़ियों के बीच में अगर आप रुक गए तो आप भी परेशान होंगे, दूसरे भी परेशान होंगे। मनोविज्ञान भी कहता है जो स्वयं नहीं सुखी है दूसरे को सुख कैसे देगा, जो स्वयं नहीं जागा है दूसरे को जगाएगा कैसे, जो स्वयं तैरना नहीं जानता तो दूसरे को कैसे सिखाएगा। अब हमारे आपके रास्ते में जो प्रश्न है कि हम पूर्णता की ओर चल रहे हैं, व्यक्ति पूर्ण क्यों नहीं था, क्या कारण? आप और हम जिस परमात्मा में से प्रकट हुए हैं वह कौन है, लेकिन पूर्णता में बीज रूप में हमारे और आपके अंदर माता पिता का अंश है। और आज विज्ञान भी कहता है, आपको थोड़ा सा मर्यादा बना के बताऊंगा, हमारे सामने कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं कि छोटी उम्र के बच्चे ध्यान कर रहे हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, दूसरों को देने की भावना भी मन में, वो भी हमने देखा, और 14-15 साल के बच्चों को देखा है, सिगरेट पीते देखा है, गुटखा खाते देखा है, कहीं कहीं तो हाई सोसाइटी में शराब भी पी रहे हैं। तो लोग मेरे से पूछते हैं हाई सोसाइटी वाले कि स्वामी जी ऐसा क्यों, अब थोड़ा सा आपको बताऊंगा मर्यादा में रहकर, हमारा आपका ये प्रकट होना माता पिता के घर से, हमारे पिता में जब विस्फोट हुआ उस समय उनके क्या विचार थे, अब जब मेरी मां ने पिता के विस्फोट को स्वीकार किया तो मेरी मां के क्या विचार थे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, कभी जब मेरे सामने प्रश्न आया तो थोड़ा बहुत तो जानता ही था, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा ही समझाना है। तो प्राइवेटली मैंने पूछा कि आप शराब पीते हो, कहा स्वामी, अब आप मुझे बताइए अपने शारीरिक सुख के लिए आपने अपनी पत्नी को भी शराब पिलाया, कहते हाँ गुरु जी, इसका मतलब जिस समय आप के अंदर विस्फोट हुआ जो प्रक्रिया घर के नाम से जानी जाती है उसमें उस विस्फोट में शराब थी, पत्नी को शराब पिलाया उसके विस्फोट में शराब थी, तो दोनों मिलकर बल्कि पिलाई हुई है, इसलिए आप तो शराब 40 साल में पिए और लड़का 14 साल में पिएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमारे आपके सामने जो प्रश्न है अभी कारण जो जागा हुआ है वही जगह है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतानें अच्छी बने, यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, अगर अच्छी संतान को प्रकट करना चाहते हो तो भारत की संस्कृति का पालन करो, पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, कर्म पत्नी नहीं, शास्त्रों में कर्म पत्नी को वेश्या माना गया, तो हम 5 रुपया दिए और काम पटाए वो चले गए, वहां संस्कार नहीं है, तो हम लोग वेश्या पुत्र नहीं है, धर्म पुत्र है। हमारे मां बाप में अगर धर्म था तो हम धर्म पुत्र हैं, और धर्म करने के लिए यहां धर्म में है क्या, आप वेद उठा के देखिए, ये परेशानियां अधर्म के कारण, धर्म के कारण, फिर ही क्षमा था उस टाइम सोच में देख रहा है। सबसे पहले हम आप शुद्ध थे, आज अशुद्ध क्यों हो गए? ये पर्यावरण था। इसलिए हर व्यक्ति अपने पर्यावरण को देखे, और विज्ञान भी कहता है पर्यावरण का संबंध व्यक्ति से है, इसलिए जहां व्यक्ति अशुद्ध होगा पर्यावरण अशुद्ध होगा। और वहां पर अभी दो दिन पहले किसी ने पूछा स्वामी जी बरसात होगी कि नहीं, मैंने कहा मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप बताइए अपने पड़ोसी को देख करके जलते हैं ईर्षा करते हैं, कहे हाँ, तो ये ईर्षा ही पर्यावरण को खराब करेगी और पानी नहीं देगा। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, ये जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे हमारी आपकी जिम्मेदारी, पशुओं की जिम्मेदारी नहीं। इसलिए हमारे सरकार ने बहुत पहले ही कहा है और आज विज्ञान उसे मान रहा है, हे प्रभु अगर मनुष्य का उतार देना तो आपका भक्त बनो, नहीं तो हमें गाय और भैंस बना देना, कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करोगे। अगर मनुष्य का अवतार देना तो आपका भक्त बनो, उल्टा सुलटा काम न करो, ये क्यों कहा गया? 400 वर्ष पहले कहा गया, आज वैज्ञानिक मानते। कलयुग में थोड़ा सा आपको दूंगा, राहु केतु शनि का प्रभाव है, एक थोड़ा सा उदाहरण आपको दूंगा राहु केतु शनि का, जिसे आप समझेंगे और हमारे ऋषि मुनियों ने उसका कहा, मैं अपने ऊपर लेता हूं। ये राहु केतु शनि का प्रभाव क्या है और आदमी को किस तरह चक्कर में डालता है, माया मानो, योग माया मानो, निमित्त मानो, जो मानो। लेकिन कलयुग की बात बता, मैंने मान लीजिए आपसे 500 रुपया लिया और मैंने कहा कि 1 महीने वापस करूंगा, 2 महीना 3 महीना याद होते हुए भी हम आपको नहीं दे रहे, इसके बाद आप आए मेरे पास, तो जब आप चले मेरे पास तो मेरी बुरा मानिएगा कि परीक्षित वाली कहानी से है, बड़े प्यार से कहता हूं इसको, मैं खिलाफ नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं, जब आप चले कि चलो स्वामी जी से कहा था मैंने 500 रुपया, तो आपसे पहले कल जो मेरे मन में आ गया, सदगुरु ने मेरी आत्मा ने कहा कि भाई हमने 1 महीने का वादा किया था उसका वापस करना चाहिए, तो कलयुग कहता है तुरंत का तुरंत वापस करोगे तो मेरे राज का क्या प्रभाव, मैं तो कलयुग हूं, मैं ऐसा नहीं कर, तो सतयुग और कलयुग की लड़ाई होगी। सतयुग कहता है कि दे दो 500, कलयुग कहता नहीं देना, आप आ गए तो सतयुग ने कहा कलयुग तो मनीषा नंद का विचार पीकर मैं तेरे को जला दू, कहा मैं मत जलाऊ, मेरे को कमजोर कर दो, जलाओगे तो ये जो गलत ढंग से रोटी खाते संभल जाएंगे, आपको खा लीजिए थोड़ा कमजोर कर, अब देख लीजिए बुरा न मानिएगा उठा कर रहा, आज जेल में कितने लोग रोटी खा रहे हैं, हॉस्पिटल में खा रहे हैं, तो कुछ तो अगर पूरा संजोग आ गया तो पहले तो मैं ही भूखा करूं, क्योंकि हमारे चले सब डॉक्टर इंजीनियर है, कोई बीमारी नहीं पड़ेगा तो कहां से मुझे मिलेंगे, पहले भूखा मैं ही करूं। तो कहता है कि कलयुग कहता मुझे थोड़ा कमजोर कर, बिल्कुल खत्म कर देगा तो ये जगह चलने वाला नहीं है, नहीं करे जो कथा है समाप्त। तो कहा था तो मैं कलयुग है तो मेरा प्रभाव देंगे, मैं आपका काम करूंगा लेकिन आप भी इतना न करूं, कहानी वो व्यक्ति मेरे पास आया तो पहले कलयुग मेरे मन में बैठा कि मैं झूठ बोलूं तू नहीं, फिर उसके मन में बैठ गया कलयुग बैठा, मैंने कहा कहो भाई कैसे आए, वो कहता है देखो 3 महीने का कलयुग बुलाता है साल भर, कहा साल भर पहले आप मेरे से 5000 ले गए थे, याद है कि नहीं? तब तक कल्लू ब्राह्मण बन के आ गए। मेरे सामने इसने 5000 दिया था बाबा जी, बाबा उसे झूठ बोलते, मैंने सोचा है तो बड़ा मुश्किल हो गया। अंदर सज्जू कह रहा है कि 500 ही लिया था, 5000 बता रहा और साक्षी ब्राह्मण दे रहा है, दुनिया मुझे दिखाएंगे। मैंने कहा ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव आप भूल गए, 5000 नहीं था 500 था। अच्छा 500 निकाल। तो सज्जू कहता कलयुग में निकालने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, इस तरह से बोलोगे तब लोग निकालेंगे, कोई निकालने वाला आए कहानी। इसे एक जोक मैंने सुना है, एक आदमी ने पुलिस ऑफिसर को एप्लीकेशन दिया कि मुझे मशीन गन चाहिए। जान हुई, कहा भाई तुम्हें क्यों मशीन गन चाहिए? कहा ये कलयुग है, क्या मतलब? ये तो जोक है, हमने एक महीने की रजा मांगी थी तो 5 दिन की मिली, हमने इतना बोझी सीमेंट मांगा था 1000 तो 200 मिला, तो मैंने सोचा कि मशीन गन मांगूंगा तो पिस्तौल तो मिल ही जाएगी। आकर एक बात कर, आप चलिए दुकान पर, कितना कर दो? 150 रुपया मीटर नहीं, अच्छा 125 रुपया कर, और फिर आते हैं 60 रुपया मीटर, क्या कर दो नहीं तो 150 बोलकर 60 बना जाते। जूता लेने जाओ उस पर कितना लिखा है, लेकिन आपको बता दो जो अच्छी कंपनी है वहां भी चल रहा है, जितना लिखा है आधे का डबल करते। एक बार बात बताओ, मैं कहीं गया मेरा पैसे था, मैंने कहा जूता इतना, कहा तो स्वामी जैसे ए, हम डबल लिखते हैं तो आते आते कुछ तो होगा, पहले ही मैं 250 कितना देंगे, इसलिए 500 लिखा है, 250 260 मिलेगा। जूते पर भी चलता कल जो वहां भी बैठा है 250 को लिखा हुआ है 500, तो फिर आप क्या करो, थोड़ा कम 300 तो लो। एक बात बताओ, एक कलयुग की बात, लेकिन नहीं आप लोग अच्छे हैं, हम हैं, हमारे पैसे में जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि पूरा सफर कलयुग है। अपने किशोर जी की बात करो, कितने बार मैं जा, नहीं नहीं तो इससे ज्यादा नहीं जाना। और मेरी बात आप लोग जानते होंगे, कलयुग से लेता हूँ, सज्जुग से लेता हूँ, तो आप जाने कितना लेता हूँ कितना नहीं, तो आप मेरी परीक्षा भी कभी की होंगे, तो मैं भी अपनी मर्यादा बार कभी हाई अच्छे लोग। एक बात बता, तो अब ये हुआ क्या, एक व्यवहारिक बात कर दिया, मैं स्वयं अपने ऊपर लेता, मैं अपने सिर पर दूध रखकर गांव में बेचने जाऊं ना, तो पहले लोग मेरे पर हंसे, क्यों बाबा जी पगे जी नहीं चल रही है दूध बेच रहे, हालांकि गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी फकीर फकीर करके परेशान करें। लेकिन आपसे कहूं अगर शराब बेचू ना और बढ़िया हो तो कहते महाराज जी मेरे एडवांस में रखना, उस समय नहीं कहते फकीर हो गए शराब को, दूध बेचूंगा तो फकीर हूं और शराब बेचूंगा तो महाराज फ्रांस वाले आ जाए भले 100 रुपया जाता है छोटो तो बड़े। फिर गांव में मैंने दूध बेचा कलयुग के बाबा, शायद तो एडवांस चाहिए नहीं मिले अगले महीने, और शराब मेरे पास आके ले जाएंगे और मैं कहूंगा एडवांस, अरे जितना चाहिए एडवांस लेके बच्चे रख लाओ 1000 ले, और दूध बेचने के बाद भी एडवांस नहीं, पिछला नहीं देते एडवांस क्या है, एक क्या कलयुग नहीं तो क्या, या विचार के। इसलिए सतयुग है सत्य है, लेकिन उस पर कली जो है हावी हो गया इस समय के अनुसार। एक कलयुग की बात सुना दूं और इस पर हम आप थोड़ा सावधान रहें। सतयुग और कलयुग की जब बातचीत हुई तो सत कहता है कि तू ऐसी गड़बड़ी क्यों करता है, तो वहां पर जो संवाद है वो इस सत तेर सत व्यक्ति के हृदय में भले कहानी हो, वो हृदय से जानता है कि सत क्या है गुण क्या है, सत्य व्यक्ति के हृदय में है और जो उसका विचार है माइंड है मस्तिष्क है और 90% पशु का है और 10% देवत तो है, ह्यूमनिटी है। देखिए देवत से ह्यूमनिटी बना, आप इंसान को भी क्या उठा लेंगे, निकट से नियर बना, जाति का जो आप ह्यूमनिटी देवत बोलते देवत से ह्यूमनिटी। तो हम आप 90% पशु हैं विचारों, और जो 10% है उसमें शुरू में देवत्व है। अब जा देखिए जब हम बड़े हुए, बचपन में तो ठीक लेकिन जब बड़े हुए तो हमारे में 90% पशुता। एक पशु के पास विज्ञान की बात होता, हाथी के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम, कीड़ी का तो अभी तक तौल नहीं पाए, और हमारा आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम का चीकू तौल करके लाइए, वही आकार और प्रकार है हमारे आपके मस्तिष्क का। इसमें 90% पशुता है, जैसे इंट्यूशन 10% का संबंध संस्कार से करने चलता है, पर्यावरण से। अब एक हिसाब लगाइए, 90% पशुता में से निकलने के लिए कितनी जबरदस्त हमें साधना करनी पड़ेगी, कि कितना दर्दल है, कितना कीचड़ है, क्योंकि हम पूरे पशु भी नहीं। 90% और पूर्ण पशु 100% पशु नहीं है। 100% पशु होते हैं तो बस दूसरे खेत में खा खा जाते, ये तो हम खाते भी हैं और बिगाड़ते भी। तो 10% तो हम आप पूरे पशु होते हैं ना तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन 90% है पशु एनिमल में सब, और 10% का संबंध है पर्यावरण से। अब आपको एक थोड़ी सी हंसी की बात सुनो, बड़े प्यार है इसको कुछ और न समझिए स्वभाव के बाद। ये 90% जो हम पशु हैं इनका पहला गुण क्या है, जहां मनपसंद चीज आए वो खा लेना चाहे, बानर थे कि कुत्ते थे कि बिल्ली थे कि कुछ भी नहीं, मक्खी थे तो भी जहां गुड़ना बैठ जाए बिना किसी के कहे। तो 90% जो हमारे आप में पशुता है लेने की, जहां से गाड़ी जहां डाल करके मुंबा में ऊंट भी करेगा। अब छोटी उम्र की बात कीजिए, मेरी भी है आपकी, आज भी वही है, बच्चे जब अच्छा भोजन देखेंगे तो बचलते हैं, ये कुदरती है, ऐसा नहीं कि वो लालची है, लालची नहीं है स्वभाव, लेकिन 10% इंटेलेक्ट होने के कारण उनको विवेक नहीं, बीमार खाते चले जाए, अब आइसक्रीम पसंद आई इतना खा लेंगे बीमार हो जाए, क्यों 10% जो है उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अभी पशु है, आप देखिए कुत्ते तक की बात बताऊं, यहां कुत्ते और कभी आपके घर में कुत्ता देख लीजिए, उसकी जितनी खुराक है आप दीजिए और खा लेगा, उससे अधिक दीजिए तो मुंह हटा लेता है, नहीं खाता, आप कभी देख लीजिए और हमें मुंह मार ले, क्योंकि वो पूरे पशु और हम 90% पशु, और 10% का संबंध विवेक से है, और विवेक जो है पर्यावरण से है, और पर्यावरण का संबंध व्यक्ति हमसे, और आपने क्या सिखाया, क्या बताया, क्या हुआ, इस पर एक हंसी की बात है। बड़े प्यार से मैं अपने ऊपर लेता हूं, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, जब ऑपरेशन के लिए आए कुछ सुनाने वगैरह लगे तो घड़ी निकाल कर रख दिए, जमाने पहले चेक कर रख दिया। अब डॉक्टर साहब अच्छे, ऑपरेशन वगैरह हो गया, मैं रोज में आ गया, उससे मेरी घड़ी किधर गई, तो किसी ने देखा था, कहे स्वामी जी की जेब में है, कहे स्वामी जी आप इतने बड़े महात्मा हो कि घड़ी रखे, कहा भाई ये लेने की आदत, देने की आदत नहीं, लेने की आदत बचपन से है, तो बचपन में भी थोड़ी थोड़ी करता था, लेकिन कितना साधु बन जाओ लेकिन बचपन की आदत जाने वाली। देखिए मैं किसी अच्छे घर में गया, आपको बता, बड़े प्यार से घर में गया, बहुत बड़े घर में, तो मेरे साथ दो चार तो रहते ही, एक हाथ जोड़ देता था उसको जा समझना, तो मुझे तो अच्छा कमरा देंगे गुरु हूं, उसमें फ्रिज होगा होगा। तो कई बार अच्छे घर के मेरे शिष्य भी फ्रिज खोलते, उस समय मैं कुछ नहीं बोलता, और उसमें कोई बढ़िया चीज है तो चल भी लेते, मैं उस समय कुछ नहीं करता था, मैं ठीक हूं। लेकिन बाद में कहता हूं तुम्हारे घर में कोई कमी थी, कभी सिखा गया कि जब इतने विश्वास से दिए हैं तो उनका भूतों को स्वामी यहां तक बचपन के पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए याद रखिए बचपन का संस्कार चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ करता हूं, आपकी कृपा से मेरा बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संबंध है, लेकिन बचपन में जब दांत के नीचे काटने की आदत है, इतने बड़े आदमी मुझसे बात कर रहे हैं, बचपन क्या इतने बड़े आदमी मेरी बात कर गुरु जी गुरु का गुरु को काट रहा है किसको का, अच्छा ये है कि नहीं, मेरी बात तो ठीक है देख बात करते हैं, और फिर क्या कह दो बचपन की आदत, और सुना बोल दो कुछ समझ नहीं आता कम सकते अरे देखा आओ लोग छोटे नहीं, मेरी बात ठीक है नहीं बोलो ये कहां से, इसलिए मैं आपसे बता दूं कि शुरू से ही बच्चों को आप मैं आपसे घर जाता यहां जितने बैठे आपके घरों का यहां बिना मां बाप की सारे मेरे से प्रसाद भी नहीं मिले बहुत अच्छी बात, तो प्रसाद में भी जा रहा, तो जब तक बच्चे अच्छी तरह ना समझता हो जाए तब तक प्यार में सुनो चाहे बेटा तुम्हें जो चाहे लेकिन मेरे से पूछ रही, तभी संस्कार पड़ेगा कि कैसे होना चाहिए। कभी कभी मैं जेल में लेक्चर देने जाता पहले बहुत जाता था, अभी थोड़ी उम्र के कारण कम हो गया, आते हैं आमंत्रण लेकिन मैं ज्यादा संस्कार कर लेता, तो वहां मैंने डॉक्टरों से पूछा तो पहले देखे पहले घर से ही चुराना शुरू किया, घर से एक रुपया चुराया दो चुराया फिर पड़ोस का चुराया फिर नहीं फिर बढ़ते बढ़ते डॉक्टर, शराब पीने वालों का भी पहले पिता से सीखा थोड़ी फिर ये सीखा फिर पूछो, इसी तरह से संस्कार में भक्ति की बात होता, जब आप आरती करते हैं तो बच्चे वहां के बैठ जाते देखते हैं तब करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो डॉक्टर साहब अंदर आज आदमी पूर्ण क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि वो हो सकता आपका विज्ञान भी करता, विज्ञान बात तो बीइंग एंड डूइंग, यू आर डूइंग टू बिकम ए टोटल मैन, बट दैट इज नॉट द डूइंग, डूइंग में क्या होगा ये करोगे, और विज्ञान भी का जो आप हैं वो आप कुदरत बना दें, जैसे मैं झूठ बोलता तो मन कहे मैं झूठ मत बोलो, देखा जाए तो सच बोलने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी है, लेकिन झूठ से सच बोलने के लिए हमें ट्रेनिंग, आपको दान देने के लिए मुझे नहीं सिखाना है, लेकिन आपसे लेना है तो दुनिया भर का कर लगाऊंगा, देने के लिए आपको क्या करना है अच्छी बात के लिए क्या है? एक हंसी की बात सुनाऊं यहां से नहीं है, 20 साल पहले की बात है गुजरात का, एक किसान मेरे पास आया स्वामी जी ये मंसूरी से मेरे लड़के का पत्र आया है तो जरा आप उसमें क्या लिखा बताऊंगा, जगह का नाम नहीं बताऊ, पिताजी लाइब्रेरी का फीस 50 रुपया पुस्तकालय का ये, अरे एक लाइब्रेरी का चार नाम लाइब्रेरी पुस्तकालय क्या क्या मैं बोल क्या छोट छोट सब लेता सब घूमा फिर, अब मैं सच बताऊं कि भाई पुस्तकालय लाइब्रेरी में कई नाम लगे, अब सच बताऊं तो पिता आपको तो मैं विश्वास जाए, मैंने कहा आप भेज दीजिए कोई नहीं आकर मंसूरी का खर्च जाता है कोई नहीं, जब लेकिन छुट्टी मार जाए तो मेरे पास जा रहा है, खैर मेरी बात मैंने भेज दिया, दिवाली की छुट्टियों में आया मैंने कहा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा था तो क्या ले जाता है लाइब्रेरी में, क्या पुस्तक में और क्या क्या। कहे स्वामी जी ऐसे गौर बात नहीं देता, थोड़ा ऐसा करो तभी देता। तो मैंने कहा भाई हाथ जोड़ा जो ये धोखा आप अपने को दे रहे हो, बाप को नहीं दे रहे, कल तुम्हारा लड़का ये करेगा तुम्हें कैसा लगेगा। अब देखते कई बार हमारा स्वास्थ्य, हम जानते हैं कि सच क्या झूठ क्या है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमें भ्रमित कर देगा। देखा क्या देखा जाए, आज अगर मैं शराब पीता हूं तो क्या देगा सत्यानाशी। सभी साथियों ने कहा पहले तुम शराब पीते हो फिर शराब को मैं पी जाती खा जाते, पहले तुम गलत चलोगे फिर वही गलत रास्ता तुम्हें भस्म कर देगा। देखा क्या देखा, भगवान ने आपको विवेक दिया, आंख दिया, विचार दिया, क्या कल क्या देखा जाए। लेकिन वही माया बड़ी भ्रमित कर देती है, जब होगा तब देखा जाए। तो इसलिए मैं आपको मनुष्य बनाना नहीं चाहता, टाइम तो मैं तो ऐसा युवा का पर्सन दोषी, मैं आप अच्छा आदमी बनाना, आप अच्छे हैं और अच्छे आदमी का पहचान क्या हुए बालक बालपन, आप पवित्रता को पसंद करते हैं, शुद्धता को, घृणा को। लेकिन है आज पवित्रता नहीं, पर्यावरण से करिए कितना स्वाद था। मैं आपको मैं हरिद्वार में था आपको बताता हूं, अपने घर में बोल रहा हूं। तो आप लोग आते हैं भेंट वगैरह तो देते, लेकिन मुझे भी धोखा दिया जाता है। खैर मैं क्या धोखा खाऊंगा, मैं तो समझ के खा रहा। जो नोट कहीं नहीं चलते मुझे देते हैं और 10 रुपया दे करके 90 रुपया देंगे। हाँ हाँ पता, 100 के नोट जो कहीं नहीं चलते कहते बना देते तो आपको 10। मैंने कहा तो ये भी ले जाए भी ले जाए, मुझे क्या पता कितने बार कर देता, आप बताए आप किसको धोखा दे, गुरु को, गुरु क्या करें। लेकिन इतना भी विवेक नहीं है कि जो नोट बदलने वाले हो भी 10-20 लेके बदल देते हैं, लेकिन वो 10 रुपया घाटे में। एक हंसी की बात सुनो, किसी को रास्ते में 100 रुपया मिला एक जो है, फिर गया तो उसने 10 रुपया काट लिया, तो जब 100 रुपया मिला, ये तो मनगढ़ंत कहानी है व्यक्ति के विचार की एक बात। जब 100 रुपया मिला कहते हे भगवान आपने बड़ी कृपा की, मैं मंदिर में शाम को 10 रुपये प्रसाद चढ़ाऊं। तो नोट बहुत फटी हुई थी, लड़ाई बदलने के लिए ले गए तो उसने 10 रुपया काट लिया 90। कहा हे भगवान तुझे को मेरे पर विश्वास नहीं था इसलिए अपना कमीशन पहले ही 10 रुपया ले लिया, अपना कमीशन पहले ही ले लिया, अब जहाज आपको प्रसाद चला। बात एक कहानी है आदमी से, इसलिए सबसे बड़ी बात है आप पूर्ण है, पूर्ण से आए हैं, लेकिन ये पर्यावरण में से भटक कर हमें अच्छे अच्छे लोग मिले जो मैंने उनको रास्ते पर लाने की कोशिश की, सभी तो नहीं लेकिन 90% समझ। एक कहानी मैं अपने चेहरे की बताऊं, किराए का मकान लिया, जो पड़ोस में रहता था वो थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह खेलता था, गई मिलेगी एक उसको कहा मेरे साथ चल, तो उसने थोड़ा इशारा करके करीब 10,000 जिता दिया। फिर कहा भाई तूने 100 रुपए से 10,000 जीता है, अभी 10,000 मिले तो क्या जाएगा क्या देगा। तो 10,000 जो था उसी से उसको इतना सिखा दिया कि अंत में हालत हो गई, पत्नी दे 5 रुपया जाकर लोट लाओ तो जुआ खेलने हो, घर की खाली लोटा भी मिल गया। फिर पत्नी कहने से मेरे पास आए भाई को सुधारो आए, कहे स्वामी जी सारी कहानी सुनाए, जहां 2 टाइम अच्छी तरह खाते थे प्यार था मोहब्बत थे वहीं एक या विचार कीजिए, भले आप एक कल्पना माने धर्मराज युधिष्ठिर माने रोका इनके साथ जुआ मत खेलो बड़े बदमाश हैं, और महाभारत के समय में रिश्तेदारी भी कोई भाई है कोई मामा है, जुआ खेलने वाले जो बुलाए थे वो स्वयं कितने बेईमान थे जब पहले किए, तो आज किस जुआ खेलने वाले रिश्तेदार पर विश्वास कर। मामा ही है ना सब, और मामा ने किस तरह से भांजे को, भतीजे को, भांजे को धोखा दिया, दिया कि नहीं, और लोग मेरे कहते। मैंने कहा चाहे तुम्हारा मामा चाहे तुम्हारा पितराई भाई हो, दो बंदे, लेकिन अगर एक गलत करते हैं तो अपने स्वाद को ही देखेंगे, रिश्ता नहीं देंगे। इसलिए आपसे कहता हूं रिश्ता मत देखना, व्यक्ति देखना अच्छा है कि अगर वो रिश्तेदार जुआ खेलता है तो अपना ही भला सोचेगा, आपका कभी भला। एक द्रौपदी को देखा जाए तो दुर्योधन की भाभी भाभी मां के बराबर है, इसलिए अगर महाभारत पढ़िए तो गंधारी आती है, अच्छी तरह महाभारत पढ़ो। अरे भाभी मां के बराबर होती है, और धृतराष्ट्र है, जैसे तूने राजा के सामने इतना कमजोर है कि न्याय नहीं कर सका अपने पति को, जैसे तो हस्तिनापुर के राजा के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया, द्रौपदी भी मां के बराबर है, मेरे भी वस्त्र को निर्वस्त्र है। जैसा आप काम कहीं ताकत है दुर्योधन की पूछने की, फिर कहती है आपके सामने आपके हाथ में ये विवेक तो है, आप नहीं जानते दुर्योधन क्या कर रहा है, और आप कुछ नहीं बोले, और इसका मामा किस तरह करके गड़बड़ किया, मैं अपने भाई को जानती हूं और अपने पुत्र को भी जानती हूं। सपनी गंधारी का भाई है, कितना सुंदर कहा कि मैं अपने भाई को जानती, अपना राज छोड़ करके यहां क्यों रोटी खा रहा, वो मैं जानती हूं क्यों खा रहा, तुम्हारे अंधे मन का गलत फायदा उठा, और आप इसे आज्ञा दो कि गंधार अपने देश में जाकर राज करे। वहां पर सपनी क्या बोला, कहे हस्तिनापुर नरेश मेरा ख्वाब, जब तक अपने भांजे दुर्योधन को मैं राजा नहीं बना देता हूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वहां गंधारी कहते राज का हक युधिष्ठिर का है, इसका नहीं है, आप पढ़िए। लेकिन व्यवस्था ने मजबूर कर दिया, आज पास के जो लोग थे वो मजबूर हो गए, विषम पितामह भी विदुर विषम, लेकिन ये सब सुन करके धृतराष्ट्र कहता हे गंधारी तेरी बात है, काम है कि मैं अपने भाई को जानती हूं, ये सही ढंग से नहीं जीता, गलत हमेशा गलत चालती है। पढ़िए महाभारत, मैं निर्णय करता हूं दुर्योधन ये नहीं बोला गलत हो, तूने जो कुछ भी जीता है सब वापस कर, तूने जो कुछ भी जीता है सब फिर सपनी चाल चलिए दूसरी बार में सब होगा। अब यहां पर मनोविज्ञान का एक बार जिससे धोखा खा जाओ दूसरी बार विश्वास करके मूर्ख न बनो, मैं आपसे भी कहता हूं चाहे मामा हो कि गुरु हो कोई भी हो, अगर आपको एक बार धोखा हुआ है दूसरी बार जिंदगी में उसका विश्वास नहीं, आपको कभी नहीं करता। हम विश्वास करते तभी धोखा दिया, तभी तो चाल चली, और उसके बाद से ये सब हुआ जो कुछ आप, इसलिए मनोविज्ञान कहता है विचार। एक मामा ने और कर्ण, कर्ण मतलब दोस्त, अब दोस्त में कोई भी आ सकता है, नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, अगर उनका स्वास्थ्य है। अब एक बात दोस्त की बात होगा, नर हो कि नारी या क्या, पांच गांव देने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया था जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए, लेकिन सभी कर्ण नहीं तैयार होने लगे। संक्षेप में सभी कर्ण का मिलन होता है, क्योंकि दुर्योधन मामा और सिद्ध से ही सलाह लेता था और किसी से नहीं लेता, दूसरों के पास मदद के लिए जाता था, लेकिन निर्णय सलाह करके मामा और मित्र से करता था। पर ये बात, हाँ मदद के लिए जाता था, जब मामा बोलते जाओ, मामा ने कहा कि जाओ, मामा ने कहा तो दाऊद को अपना गुरु बना, पर ये हमारे अच्छे अच्छे विद्वान बैठे गदाई जो सी और फिर समझ गए कि हम दो भाइयों का अलग करने के लिए मामा चार चल रहा है। पर ये मामा तो निर्णय दिया मामा और कर्ण ने, और फिर गया दाऊद के पास सीखने के लिए। एक बात बताता, ये लोग निर्णय देते थे तब हो जाता था, निर्णय लेने के लिए नहीं जाता। अब मामा और दोस्त संक्षेप में, अगर पांच गांव हम दे देंगे तो जगह तो बनेगी आपस में, और फिर से बहुत इज्जत हो, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि लोग प्रवेश न करें। बातें बहुत कुछ है लेकिन संक्षेप, मामा ने जो कि तुम्हारा भविष्य करने भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मित्र मित्र बोल रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं मित्र, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सामने मैं प्रबल हूं, लेकिन जब मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये भविष्य का एक पाप दिखा करके बुद्धि बदल दिया। तो क्या ये कर्ण जानता था कि दुर्योधन के संतान भी सब नालायक निकलेंगे? क्या विचार था? लेकिन भविष्य का भय दिखा करके बुद्धि बदली, और बुद्धि इसलिए बदली कि अगर दोनों का मेल हो जाओ, मेल होने के बाद मेरी क्या जरूरत हो। कर्ण भी सोचेगा मैं अर्जुन के सामने ही लड़ सकता, अगर इनका मेल हो गया तो मेरी क्या जरूरत। अब याद रखिए मनोविज्ञान अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कि मामा दोस्त दोनों ने सलाह ठीक से दुर्योधन को नहीं, इसलिए आपसे भी कहूंगा कि आपका कोई मित्र है, महाभारत के समय में इतना स्वास्थ्य था तो आज कितना होगा। अरे मित्र एक मिल जाए बहुत काफी है, और मित्र आपकी इस तरह मदद करेगा बताऊं। जब सुदामा गए किसी के पास हे मित्र, लेकिन सुदामा तक को पता नहीं चला और कैसी मदद किए, किसी को पता नहीं चलता जो मदद करे वो मित्र है, और चिल्ला चिल्ला के जो मदद करे वो व्यापारी है, मित्र नहीं। मित्र का अर्थ सुदामा किससे लेंगे, और आजकल तो बस थोड़ा भी दाम देंगे तो लाउड स्पीकर से इतना चिल्लाएंगे बस पूछे, और कई बार इसलिए चिल्लाते हैं जो नहीं देने वाले वो भी देते। मनोविज्ञान, मैंने कहा किसी से, मैं प्रैक्टिकल बात बताऊ, मैंने किसी से कहा चलो मैं सब प्यारे हैं पटेल है डॉक्टर है, मैंने कहा पटेल साहब ने 10,000 दान दिया, सैनिक साहब ने 10,000 दिया, अब इन बदन पे मित्र कहते हैं कि मुझे भी देना पड़ेगा, ते कहेंगे इन बदन से आपसे 10,000 और मैं जानता हूं 10,000 तो रोटी पानी में कहां से दोगे, बाद में तो मुझे वापस ही आना पड़ेगा। इसलिए कई बार प्रजा में आप में ऐसे भाषण दिए जाते हैं कि ना देने वाले से मजबूर करा लेते हैं, लेकिन ऐसा दान कभी आपके लाभ में आने वाला नहीं। जो खुशी से दिया हम देख रहे इसलिए कर रहे हैं, इसलिए हमें लालच दी गई जहां मेरा अधिकार नहीं था, और मित्र के नाम से मामा के नाम से हमें बर्बाद किया गया, मतलब दुर्योधन। इसलिए थोड़ा मित्रों का ध्यान, जो दुख में काम आए, खराब समय में जो आपकी बुद्धि को ठीक रखे। इसलिए हमारे यहां कहावत है, हमारा बेटा हमारा मलबा हमारा बेटा जब 18 साल का हो जाए तो बाप और बेटे को मित्र बन जाना चाहिए, नहीं बड़ा मुश्किल होता है। अब मित्र का मतलब है कि एक दूसरे की हर बात, बेटे की हर बात पिता जाने, पिता की हर बात बेटा जाने, और मित्र भाव से जहां सुधारना है वहां बेटे को सुधारे। लेकिन अगर दबाव रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ समझाया। लालच, अभी आप लोगों की बात होगा, बड़े प्यार से मना जी लड़के को मेडिकल में भेजना है लेकिन नंबर कम हो गया, आपका बहुत परिचय ज्यादा तो। अभी हमारे पंजाबी दादा बैठे तो कोई आया इनके सामने, स्वामी जी 2 नंबर कम है, आपकी निगाह हो जाए तो काम बन जाए। तो मैंने कहा मेरे ऐसे लाखों से लें कहा दोनों किसका नंबर बोल रहा हूं दादा बैठे। मैंने कहा मैं नहीं करता, आप आना आइए, क्योंकि मेरी साधुता अलग थी, जो परिचय अलग है। आज मुझे 8 लोग जो जानते हैं वो मेरी साधुता भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया कि गवर्नर बनाया कि राष्ट्रपति बनाया, मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूं। लेकिन आपको बताऊ, कल सुशांत चौधरी के माता जी हैं, कितना को पता था, अरे सुशांत चौधरी, मैंने कहा हमारा संबंध तो पूरा माना, आज आपको पता चला। उसको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि स्वामी जी जीतेगा बनेगा तो हम आपका दर्शन करने आएंगे। और तुषार जो है दिल्ली से वापस आ गया है। अब आपको लगता है तुषार को आज आप मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन जब वो पढ़ता था तब से मैं तो मैं तुषार को जानता हूं, किसी मंत्री को गजरा को नहीं। अब गजरा बहन है अमर सिंह की धर्मपत्नी और लड़का हो गया मंत्री, तो कल से राजद का महाराज सिपाही कर दो, लेकिन यह मंत्री सामना नहीं करेगा, क्योंकि आप परिचय का नाजन चढ़ा रहे हैं, साधुता का पहले क्यों नहीं आया। एक बड़ी सुंदर बात होता हूं, मैं सब नहीं बताता, लेकिन वो सब मैं किसी हमारे परिवार में भी कोई प्रधानमंत्री, मैं वहां बैठा हुआ प्रधानमंत्री के पास था, मेरा काम थोड़ा थोड़ा व्यवस्था था, काम के लिए नहीं गया था, कोई और बात थी, सिफारिश करने नहीं था, साधु करता कुछ परमिट वगैरह के बाद कुंभ के लिए। तो वहां एक आए तो सामने से एक प्रश्न उठा, जब इलेक्शन के समय मैं आपके शहर में आया तो आप मिलने आए थे, कहा नहीं, तो आज आप प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं कि रिश्तेदार से मिलने आए। अगर रिश्तेदार से मिलने आए हो तो इतवार के दिन मेरे बंगले पर आना, और प्रधानमंत्री से मिलने आए हो तो बताइए आपको क्या करती। कितना सुंदर मुझे मेरा किसी मंत्री से परिचय इसलिए आपसे फाइल लेकर आया, बाकी साधु तो मैं पहले भी था, ये साधुता बिकने वाली नहीं, चाहे जिसको आना हो आए ना आना होगा। मैं दादा के सामने कहा कि आपको जाना चाहिए, हाँ मैं 2 नंबर के लिए कुछ नहीं, हालांकि मैं करवा सकता था, इतना उनको किसी ने कहा मनीषा ने चाहे तो हो जाए, लेकिन मनीषा ने गलत काम किए तो चेलों का क्या होगा, फिर तो लोग कहेंगे बस स्वामी जी की 11,000 दे दो, एक दिन का भंडारा करा दो, काम कर दे, और वो गलत ढंग से जब आगे जाएगा तो गलत घंटे ही कमाएंगे। एक बात, इसलिए आज जो प्रश्न आया बहुत ही सुंदर, अधूरा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। जब आप साधना में चलेंगे तो कितनी चीजें आपको परेशान करती हैं, आपने धीरज नहीं, आप पढ़िए कुरान वगैरह, कितनी प्रार्थनाएं ब्रह्मदेव से की गई, ब्रह्मा पर कितनी शंकर से की गई, पढ़िए तो गई, ये सब कल्पना है। कितनी प्रार्थना शिव से की गई, सब नहीं कहा समय आने दो होगा, इन बड़ी बड़ी शक्तियां क्षण में कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी समय, आप अच्छे रास्ते चल रहे हैं, कितनी भी सिद्धि होगी लेकिन समय तो लगेगा, आप कितने अच्छे किसान हैं लेकिन 3 दिन में तो फसल नहीं हुई, रखवाली करना ही करना। स्वामी जी मैं रोज 25 माला घुमाता हूँ, लेकिन कितने दिन से घुमाते? तो आप अपने खेत में रोज आना, पानी दो, फिर बताओ कितना पानी जल्दी फसल होती। अरे जो आयो नहीं चलेगा। कितने लोग आते हैं स्वामी जी रोज इतनी माला घुमाता, माला तो घुमाते हो लेकिन पड़ोसे के लिए कितना अच्छा विचार करते। तुम्हारा विचार क्या है? रोज मंदिर जाते हो, ब्राह्मण की तरह तो नहीं जाते? माले के पक्ष में हो लेकिन उनसे ज्यादा पक्ष आपके विचारों में। माला आप किसके लिए घुमा, मंदिर आप किसके लिए जा रहे? सबको सुख देने के लिए कि दुख देने के लिए? आपकी भावना क्या है? इसलिए जो भी काम करो धीरज रखो, समय पर रखोगा, और अपने जो छोटे उनको क्षमा करो, क्षमा बलवान ही करेगा। जहां लालच आए दमन करो, विवेक सोचो कि गलत रास्ते से लोग जेल में गए तो मैं भी गलत रास्ते चलूंगा। अंतिम पड़ाव पे आ जेल। जापान का प्रधानमंत्री 3 साल पहले तनाका, और जब जेल में गया तो उसकी पुस्तक पर यह 30 पेज की है, उसमें लिखा है, मैं जानता था कि अंतिम पड़ाव जीवन का जेल है, क्योंकि गलत रास्ता, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। 3 साल पहले जो जापान का प्राइम मिनिस्टर तनाका था, उसकी पुस्तक है और उसमें लिखा हुआ कि मैं जानता था कि मेरा अंतिम पड़ाव जेल है, क्योंकि मैंने गलत रास्ते से किया। तो मैं एक दिन की बात करता, एक धर्म रहा और गलत रास्ते गए, राज गया, सिद्ध भी हुआ, द्रौपदी के साथ क्या हुआ? ये तो उद्देश्य थे कि बचा रहे, लेकिन ये सीखना है कि आज हमारा जो सत्यानाश, उसका कारण है स्वयं। कोई हमें सत्यानाश नहीं कर रहा। कई बार लोग मुझे कहते, स्वामी जी मेरे मित्र ने मुझे शराब पीना सिखा दिया। मैं तो मनोवैज्ञानिक, आपके मित्र ने आपको शराब पीना सिखा दिया तो आप मित्र से उसको छोड़ा क्यों नहीं? आपका तो मित्र ने सिखा दिया था, आप उसे छोड़ा क्यों नहीं? अपनी कमजोरी मित्र बुलाते जबरदस्ती पिला आपको। इसे जहां ऐसी बात आए विवेक दमन सोचो कि इसका परिणाम क्या है, और अपने माता पिता गुरु से चोरी मत करो, उसका परिणाम आपके सामने आएगा। जिन लोगों ने चोरी की पुरानी कहानियों में, आज उनका सत्यानाश हुआ। जो आपके हितैषियों से चोरी मत, गलत रास्ता मत अपना, पुरानी कितनी कहानी है। और आप जब जन्मे थे तो पवित्र, आपके मन में कोई किसी के लिए बुरा विचार था? इसलिए हमारे यहां जो पाठ है, पूजा, मंदिर मस्जिद जाना है, सत्संग करना है, इसीलिए कि हमारे जो गलत विचार हैं उनका रूपांतर हम सुधरे। एक पशु भी बुरा न मानिएगा, एक पशु भी कुदरती साल में एक संतान पैदा करता। आज लोग बाघ को जानते हैं, बाघ हिंसक है, लेकिन जिंदगी में एक संतान पैदा करके संजमी हो जाता है। जो लोग जानवर के इतिहास पढ़े हैं मेरी बात का समर्थन, शेर को साल में एक बार गृहस्थी बनता है, लेकिन बाघ जिंदगी में एक बार जबकि मानता या विचार की है। आपने इतना संयम जब इनमें है आप में हो सकता है, लेकिन वही विवेक हट जाता है, लालच आ जाता है। एक बार गलत चटनी चख लीजिए तो बस पता नहीं क्या से क्या होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। आप ईश्वर पर पूर्ण परायण हैं? अगर हैं तो चिंता किस बात की, दुख किस बात का? आप सुबह अपने परमात्मा के प्रति भाव पैदा करते हो। फिर चिंता किस बात की? जिसने कल रक्षा की आज करेगा, आने वाला कल करेगा। नहीं, कल की चिंता में हम अपने जीवन का सत्य ना, कल क्या होगा, कुछ होने वाला है, जो है उसको संभाल, जो है ही नहीं उसकी क्या बात करते। विवेकानंद ने कहा, तुम्हारी उंगली में से हीरे की अंगूठी निकल जाए चिंता मत करो, तुम्हारी अपनी कमाई हुई है, हीरे की अंगूठी फिर आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी उंगली कट गई तो हीरे की अंगूठी रहते हुए कैसे करो। कुदरत ने जो तुम्हें सके उसको संभालो, हाथ को संभालो, मन को, विवेक को। कुछ पैसा चला गया हो गया तो फिर आ जाए, धरने का मकान चला गया चला आप लाए। कुछ ऐसे इलाके का मैंने जाने का मौका मिला जहां धरने कम के बाद जाना, तो जिनके बच्चे लायक थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, उनको कोई चिंता नहीं, लड़के का पिताजी नई कोठी पर जाएगा आप चिंता नहीं। लेकिन जो कोठी बनाए, संस्कार नहीं बनाए, रो रहे थे कि लड़का भी गया शराब में और कोठी भी ले गई धरने कम पर, नहीं अब क्या करूंगे, एक मांगो और क्या। आपका लड़का लायक है तो फिर क्या चिंता, हमारे यहां आपके हमारे ये दोनों लेकर आए। अगर आपकी संतान आपका सिर्फ लायक है, सब कुछ हो जाएगा जाने के बाद भी, लेकिन करोड़ रुपया दे जाओ अगर नालायक है तो आपके जाते ही साल में सब खा पी कर बराबर करते। इसलिए आपका लड़का लायक है तो चिंता मत करो, नालायक है तो उसके नाम से कुछ जमा करने की जरूरत है, क्योंकि तो जमा करोगे तो आप तो रो रो के जमा करो और वो पीपी के सब खत्म। आज लालू महाजन की हालत क्या है, बोले आप लोग चैलेंज करता हूं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट है, छोटे भाई ने बड़े भाई बोले मारा, वो कर्म मैं जानता हूं और कर्म की गति है, कितना पैसा है लेकिन अच्छे काम में खर्च करने का मन नहीं होता, 24 घंटे और अभी बहुत कुछ इतिहास होता। एक बात प्रमोद महाजन, रमेश महाजन से प्रमोद महाजन का लेके आना, एक राहुल गांधी तैयार हो रहा प्रधानमंत्री बनने के और एक तैयारी कर रहा है ऊपर जाने, दोनों के रास्ते एक ही नाम। एक बात हो, लेकिन मैं जानता हूं वो सब कहने की जरूरत है। इसलिए अगर बचना चाहते हो तो आप बच सकते, आपका दोस्त कैसा है, आपका पड़ोसी कैसा है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो सुधारने की कोशिश करो, लेकिन उसके सुधारने में अपना सत्यानाश नहीं करना। हम बुरा भी नहीं बोलेंगे लेकिन जाएंगे भी, ये आपके हाथ में। एक बात है, जो चीज आपके हाथ में दूसरे को क्यों डालते हो, लेकिन कहीं लालच। हमें लोगों ने बताया, पहले अपने पैसे से सिखाया, आज खा के कितने लोग शराब भी पहले अपने पैसे से पिलाते हैं फिर आपका पीना शुरू कर, आखिर क्यों अपना पैसा खर्च कर रहा है, या विचार तो करो। इसलिए डॉक्टर साहब, पटेल साहब, संजय साहब, बदन ने कहा आपको, क्या आज इतना विवाद क्यों है, व्यक्ति जाते हुए सो गया है, उसका विवेक मर गया है, वो जानता नहीं श्रेय क्या है, श्रेय क्या है, शुभ मार क्या, अशुभ मार क्या, अशुभ में गलत रास्ते में तात्कालिक क्षणिक सुख मिल जाता है, उसी क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए वो भ्रमित होकर के अच्छे रास्ते नहीं जाता। या विचार की एक प्रसंग है, बहुत कम लोग जानते हैं और बड़े प्यार से कहूंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कृष्ण का एक समय सम्राट और माया सो चल रहा, बहुत कम लोग जानते हैं, पूरा पढ़िए। ये इतने मायावी थे कि माया से कृष्ण की रचना करके मार दिया और तहलका मर गया। दाव बड़े भाई भी घबरा गए, ये कैसे हो गया। फिर कृष्ण प्रकट हो कहा, मुझे दाव सिखाना, तुझे मेरे पर विश्वास है कि नहीं, कहा था तो क्यों रोने लगा, आपको देखा सारी दुनिया की माया। जब विश्वास हुआ, देखे मनो में क्या, जब दाऊद जी आप पर मेरे पर विश्वास था तो कोई घटना घट अगर आपको घबरा कर दे, कमजोर कर दे, तो विश्वास कहां है? क्योंकि सम्राट ने एक मायावी किस्म पैदा करके किया था, लेकिन एक जिसके लीला थी अपने सैनिकों को बताना था, अगर तुम लोग मेरे पर विश्वास करो तो कठिन से कठिन समय को मैं जीत सकता हूं, लेकिन तुम लोग कोई घटना देख के घबरा गए तो मैं जीत सकता हूं। ये मनोविज्ञ, यही मैं आपसे कहता, कोई कितना जादू दिखाए, कुछ करे, अगर आप अपने पर विश्वास है, अपने परमात्मा पर, तो आपसे कहता हूं ये विश्वास आपके परिवार में, आपके समाज में आए, आप जहां आए, और इसी के आधार पर बड़े प्यार से कह रहा हूं, आप और परिवार के लोग कैसी भी घटना आ जाए, अगर घबरा करके कमजोर नहीं बनोगे तो मैं कहता बिगड़ से बिगड़ परिस्थिति में भी आपको मार्ग मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और घबरा गए तो 50 लाख की गाड़ी है, एक व्हील में हवा कम हो गई, इसलिए एक व्हील का मतलब एक नट का मतलब परिवार, ये मेरा परिवार है, सब है, इसमें से एक भी शिष्य अगर कमजोर हो गया तो पूरे परिवार का हाल खराब हो गया। आप यहां बलवान बनने के लिए आते, कमजोर बनने के लिए नहीं आते, कमजोरी को दूर कैसे करें? अब रही गुरु और चेले की बात, मैं सिखाता हूं, बताता हूं, अगर कोई नहीं मानता तो बड़ा मुश्किल हो जाए, हम अपना फर्ज अदा करेंगे लेकिन भोगना तो उसी को पड़ेगा। तो आप लोग इतना समय निकाल कर हरिद्वार आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, उसके पीछे भावना यही है, हमारी भी यही भावना, कभी धर्म धर्म नहीं समझ आए तो मेरे पास आ, शुभ अशुभ नहीं समझ आए मेरे पास आ, लेकिन घबराओ मत, पाप हो गया, अशुभ हो गया, फलाना हो गया, ये भय आपका सत्यानाश कर रहा। कितने भय हमने कई तरह के देखे, इसलिए मैं परमात्मा में श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके, आप अंदर जो परमात्मा उसे प्रकट करो, केवल प्रकट करना है, बनाना नहीं है, और प्रकट करने के लिए घर्षण की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अभी मैं बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, दो जगह टक्कर हो रहे, फ्रिक्शन हो रहा, आपकी पेटी है, पेटी में फ्रिक्शन है तब आ जाती, आज प्रकट की जाती, बनाई नहीं जाती है, तो आप में शक्ति है, शक्ति बनाने के बाद न कर, शक्ति को प्रकट कर दिया तो है आप, और नहीं प्रकट हो रही है तो क्रोध में दबी है, वासना में दबी है, स्वार्थ में दबी है, कहीं कहीं ऐसी चीज है जो आप दबा दी है, जैसे पानी, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पानी पंडित आगे बताता है कि 100 फुट पर पानी है, लेकिन पहले मिट्टी आ गई, ग्रेवल आ गया, ये आ गया, फिर पानी, आज अंदर शक्ति है लेकिन अन्नमय को प्राणमय मनोमय विज्ञानमय एक खान पान देखना सुनना और कभी हुई है, इसी को शुद्ध करना है, निकालना है, आंख को शुद्ध करना है, शब्द का अच्छा देखो, कान को शुद्ध करना, अच्छा सुनो, हाथ से अच्छा काम लो, पैर अपनी मर्यादा के बाहर मत जाओ, भोजन करो लेकिन शरीर शुद्ध रहे, संतुष्ट रहे, ये जो बेकार की चीजें निकाल, हम शिल्पकार के पास जाते हैं, हम तक मरमर का एक टुकड़ा देते और कहते इसमें भगवान की समाज, भगवान किसको प्रकट किया जाता है, बना के चिपकाया नहीं जाता, आज सब संगमरमर हैं, बहुत कीमती है, लेकिन इसमें जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसके निकालने की बात कर रहा हूं। शिल्पकार जब पत्थर संगमरमर देखता है, संगमरमर कीमती है, लेकिन ये मूर्ति के हिसाब से जो पत्थर बेकार निकालता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। आप सब कीमती है, नर और नारी के रूप में, लेकिन जो चीजें निकालना चाहता हूं निकल गई, जो शक्ति प्रकट हो गई, सिरका से मूर्ति बहुत अच्छी बन गई, ठीक है, लेकिन प्रकट हो। इसलिए आप सब में जो ड्यूनिटी है, देवत्व वो है, उसे प्रकट करना है। बेकार की चीजों को निकालना, बेकार चीजें बैठना, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बद है, मत्सर है, वासना, और ये निकलते ही और तीव्रता प्रकट हो जाएगी। फिर आप भी सुखी, परिवार भी सुखी, समाज भी सुखी और सौ साल बहुत आनंद से दिखेंगे। तो डॉक्टर साहब इन वजन जी, आज जो इतनी परेशानियां हैं, आज इंसान स्वार्थी हो गया, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी गलत कर सकता है, गलत सलाह दे सकता है, गलत रास्ते चल सकता है। और सबसे बड़ा है कि पैसा गलत ढंग से कमाने बहुत कोशिश की जाती है। दूसरे की जमीन जमीन हड़पने की बात की जाती है, आपका कपड़ा कैसे उतार दो, आज मोटरसाइकिल कैसे ले, समय था एक देने का और देश का था। एक व्यक्ति इंसान शादी के रूप में तो जगत में देने के आया, तो मकान बनाएगा देखकर जाए, घोड़ा पुराने घोड़ा देखकर जाए, हाथी देखकर जाए, तो क्या लेकर जाए, सब कुछ देखकर ही जाना। तो संस्कार से बच्चों को लगे कि मेरा अधिकार है, इसलिए हम सबको जागरूक करना पड़ेगा। तो आज जो अधूरा आदमी नजर आ रहा है, विकास हो रहा है, उसके पीछे हमारा विश्वास इंसानियत नहीं है, शैतानियत है। शैतान हमेशा अपना स्वार्थ देखता है और देवता दूसरे का भी ख्याल रखता है। मैं जो कर रहा हूं कहीं किसी के नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो होना हो जाए लेकिन मेरा फायदा होना, ये मेरा मेरा करके हर व्यक्ति सत्यानाश करे। मैं आपसे कहता हूं आपके लड़ने की शादी भी होगी, लड़ने की भी होगी, अगर गया है तो वापस भी आ जाएगा, जैसे अध्यात्म निकले सब आ गया। लेकिन एक अच्छे इंसान मदद करो, एक अच्छे इंसान अच्छे बनो, बनाने कोशिश करो, फिर भी कोई तकलीफ आए कि स्वामी इतना अच्छा होने पर भी तो मैं गुरु मैं रास्ता बनाऊ। राम को जब तकलीफ आई तो संतों के बीच में संत रास्ता निकालते, आपको अच्छे रास्ते चलते समय कोई तकलीफ आई तो मैं जीवित हूं, आपके पास हूं, आप मेरे पास आए, रास्ता निकाल दो, हताश तो मेरा रास्ता हुई। और जो तकलीफें हैं वो हम स्वयं अपनी गलती से लेते हैं, किसी दूसरे गलती से, और उसमें से निकलना है तो अपनी गलती बताओ,